लिहाजा अल्लाह ताला यहां हम सबको ये बातें बता के अब क्या कहते हैं, अम हसिब तुम अंत दुल जन्ना, क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है क्या कि महज ईमान का दावा करके जुबान से अंत दुल जन्ना तुम जन्नत में चले जाओगे, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? क्या तुमने समझा कि कलमा पढ़ना मुसलमान होना है? तो गलत समझा। वलम्मयातिकुम मसलुल्लज़ीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, अभी तो तुम्हें वो मुसीबतें पहुंची ही नहीं जो तुमसे पहले वाले ईमान वालों को पहुंची थी। क्या पहुंची थी उनको? मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रौ, इन पर सख्तियां और मुसीबतें आईं, हत्ता कि वज़ुलज़िलू, हिला मारे गए, यानी ऐसे शेकी हो गए उनके हालात, कैसे लगता था कि अब ये नहीं बचेंगे। फिर क्या हुआ? हत्ता यकूल और रसूलू, यहाँ तक के रसूल ने कह दिया, और उसके साथ साथ वल्लजीना मनु माहू, जो लोग ईमान लाए सब पुकार उठे, यानी उस वक्त रसूल और उसके साथ ईमान लाने वाले सब पुकार उठे, मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। थक गए हैं, घबरा गए हैं, परेशान हैं, क्या होगा कब होगा? तो कहा तसल्ली दो, अला इन्ना नसरुल्लाही करीब, उस वक्त इनको तसल्ली दी गई कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ये है वो आयत जो आपको बताती है कि क्यों लोग राहे हक पर आने की ख्वाहिश के बावजूद आ नहीं पाते। पीछे हमने क्या देखा? हुब्बे दुनिया, दुनिया छुटती है, दुनिया की वजह से परेशानियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। हक नजर आने के बाद भी लोग साथ क्यों नहीं देते? क्योंकि दुनिया पर चोट पड़ती है। और दूसरी वजह यहाँ बता दी कि मुश्किल आती हैं, मसाइब आते हैं, तकलीफात होती हैं। लोगों को अल्लाह आजमाता, ठोक बजा के देखता है कि बताओ तुम कितने पानी में हो। इसकी मिसालें अल्लाह ने यहाँ दे दी कि जब उनको पकड़ा हिजरत मदीना के बाद, आप देखिए कि यहूद और मुनाफिक थे, नबी सल्लम और आपके साथियों के पीछे ही पड़ गए। वजह क्या है? उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि हमारे तौर तरीकों से मुख्तलिफ दीन आए। तो याद रखिए, आप मुसलमान घर में ही क्यों ना पैदा हुए हों, अगर वो एक रिवायती मुसलमान थे ना, बस नमाज रोज़ा हज का नाम दीन है, जब ये कुरान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आजकल आ रहा है, शऊर के साथ तफसीर के साथ इसको अपने दिल पे लेंगे, तो ज़रूर वो हालात आएंगे कि आपको अपनों से बातें सुननी पड़ेंगी। आपके अपने घर वाले कहेंगे तुम्हें क्या हो गया, ये कैसी तलब है? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत ज़्यादा कारोबारी शख्स होता है ना, जिसको पैसे से नहीं प्यार होता, असल में कारोबारी लोगों को उनको काम से प्यार होता है, बस आदत हो जाती है माल कमाने की, खर्च कोई नहीं करते अपनी ज़ात पे, सिर्फ कमाना है, ये एक किस्म की क्रेव होती है उसको, भी रात दिन काम करना होता है ना, सुबह भी शाम भी, कस्टमर को कभी जाने नहीं देता अच्छा दुकानदार, वीकेंड पे भी दुकान खोल लेता है, शाम को भी देर से बंद करता है। बिल्कुल इसी तरह जिसको ये रास्ता नजर आ जाता है ना, वो अपना नुकसान नहीं करना चाहता। अब वो दिन में भी काम कर रहा था तो रात को भी करता है, वीकडेज पे भी करता था तो वीकेंड पे भी करता है। अब उसको तो समझ आ रहा है कि मेरा प्रॉफिट बन रहा है, राइट, नेकियों की सूरत में और आखरत में भी और दुनिया में भी सुकून है, दूसरे लोग नहीं समझ रहे होते। फिर वो क्या कहते हैं? ये जज्बाती हो गई है, इसको एक भूत सवार हो गया, देखना चंद दिन में उतर जाएगा, ये फनेटिक हो गया, ये दीवाना हो गया, और जिसके मुंह में जो आता है, कोई पाबंदियां लगाएगा, कोई ताने देगा, कोई इल्जाम देगा, कोई कुछ करेगा, और जब ये सारे ही बातें, अब खानदान पूरा ही आपके खिलाफ बोलने लग जाए, अभी तो शुरू में ना खुश है, जरा आगे आगे देखिए होता है क्या आपके साथ, अभी आप लोगों की नजरों में नहीं है ये अपने खानदान की, जिस दिन आपने उनकी रस्मों रिवाज, खाने पीने जीने मरने से जरा उनको नहीं आपने कुछ कहना, मैंने आपको पहले दिन से ये सबक सिखाया हुआ है, आप खुद ही अभी हटेंगी तो वो केयरफुल हो जाएंगे। ये क्या हो गया? उर्दू में एक लफ्ज़ सुनते हैं मुहावरतन, कि एक हमाम में सब एक जैसे, किसी को नहीं बुरा लगता, सब जो एक महफिल में बैठे गा बजा और गलत काम कर रहे हैं तो सब खुश हैं। अब आप एक खुद वहां बस बैठी हैं, आप उनकी महफिल में नहीं शामिल होती, मिसाल है, उनको क्या लगेगा आपको देखकर? गिल्ट होगा। एक ऐसी महफिल है जहां सारे जो हैं वो खूब अपनी मर्जी के कपड़े पहने ओढ़े हैं, जिससे जिस्म भी नहीं छुपता, आप वहां स्काफ हिजाब लेके निकाब करके बैठ गई अगर मर्द है, अब उनको क्या होता है भला? उनका मजा चला जाता है, देखिए, जब कोई दोस्तों में से एक दोस्त भी उसमें पार्टिसिपेशन छोड़ता है, मिसाल देती हूँ कि चार दोस्त हैं, पांच कहती है चलो चलते हैं फ्रूट चाट खाते हैं, सात बोतल पीते हैं, ऐसे जो एक फन में लोग करते हैं, अब आप जाके बैठ के खा पी रहे हैं, तीन, एक कहती ना ना भाई मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पता फ्रूट साफ है कि नहीं, पता नहीं इसमें गंद ना हो, नहीं, मैं बक्सा की फ्रूट चाट नहीं खाती, मैं दही बड़े नहीं खाती, वो बैठ गई, अब आप तीनों को बार बार क्या फील होगा, मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं, कुछ तो ले लो, नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, उनके रंग में भंग डलता है। जब हम अपनी मर्जी से जीना शुरू करते हैं ना, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, तो मुआशरा बेचैन हो जाता है, इस पे फिर वो रिएक्शनरी होते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी फिर कल आप उनके ऊपर तनकीद करेंगी। पहले शौहर नमाज नहीं पढ़ते थे, बच्चे नहीं पढ़ते थे, आपको कोई गुस्सा भी नहीं आता था, प्यार से अब कह देते थे बेटा उठो नमाज पढ़ लो, फिर भी कहते ना ही उठे, अच्छा एक ही दफा स्कूल जाने के लिए उठे, दिल के अंदर ही पुकारें थी। अब जब वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपका दिल करेगा पत्थर लेके इनके सर पे मार दूं जो उठ ही नहीं रहे, सच्ची जो बात है, फिर आपकी जुबान भी सख्त हो सकती है, आपको गुस्सा भी आएगा, फिर आपका वो नहीं पढ़ते तो आपका मूड अच्छा नहीं, पहले बड़े प्यार मोहब्बत से नाश्ता बना के पास बैठे होते थे, आओ मेरा बेटा खा लो, कोई बात नहीं नमाज नहीं पढ़ी पढ़ लिया करो, कोई गुस्सा भी नहीं आता था, अपने हाथ से लुकमे तोड़ते थे उस बच्चे के मुंह में, अब आपका दिल करेगा इसके लिए मैं ब्रेड का एक स्लाइस भी ना टोस्ट करूं, भूखा जाए आज, फर्क तो पड़ता है, ये तो कभी नहीं हो सकता कि ईमान अंदर आए और फर्क ना पड़े, हीट खोलें और कमरे का टेम्परेचर ना बदले, फर्क पड़ता है ना, हीट खोलते हैं तो ईमान की हीट अंदर आती है, ये कैसे हो सकता है कि आपका दिल दिमाग जुबान एक जैसी रहे, इस पे लोग बेचैन होने लगते हैं। अब जब वो लोग इर्द गिर्द दूसरों की बातों की बंदा बिल्कुल परवाह नहीं करता, मिसाल है कि मैं और आप इधर लंदन के शहर में बैठे हैं, लेट्स सी अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर में कोई बैठा हुआ हमें बुरा कह रहा है, हु केयर्स, मुझे और आपको पता भी नहीं वो कौन है कहाँ है और हमें क्या, लेकिन हमारे घर वाले ही हमें बुरा भला कहेंगे तो चूंचा करेंगे, तो अल्लाह कहता हम हसिब तुमन तदखुलुल जन्ना, ये जन्नत महंगा सौदा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, अल्लाह के नबी ने फरमाया अला इन्ना सिलत अल्लाही अल गालिया, खूब जान लो अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, क्योंकि ये ब्रांडेड है, तुम्हें समझ ही नहीं आती एक परस 10 रुपए का मिलता है, दूसरा 1,000 का मिलता है, फर्क क्या है, मेरे जैसे को नहीं समझ आती, लेकिन जो समझ वाले हैं उनको बड़ी अच्छी समझ आती है कि इसके ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, कुछ नहीं होता सिर्फ ब्रांड की मोहर होती है, तो अल्लाह की जन्नत तो ब्रांडेड है, उस जैसी तो कोई है ही नहीं, कोई एक कंपनी अच्छी ब्रांडेड नहीं लेंगे दूसरी ले लेंगे, जन्नत की तो कोई कॉपी भी नहीं बिकती, हम दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बनेगी, तो अल्लाह ताला यहाँ हम सबको जहनी तौर पे तैयार करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर तुमने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, अब वो एक्सेप्ट अगर हो गया इंटरव्यू टेस्ट, फिर रोज डेली शीट आती है ना जॉब पे, ये आपकी जॉब एम्प्लॉयज को मिलती है ना, फिर आप उसको यू यू करके यस थिंग्स डू कर ली एंड पे शीट छोड़ के आप ऑफिस से निकल जाते हैं, आपका मैनेजर आता है अपनी शीट दे के कहते गुड डन डन डन, ठीक है, अब एक जॉब भी ऑफर करे ले भी ले एक्सेप्ट भी करे, और के मुझे काम क्यों देते हो, मुझे सुबह 9 बजे क्यों बुलाते हो, 5 बजे तक क्यों रोकते हो, देखो मेरे सारे दोस्त फिल्म देखने जा रहे हैं मैं काम पे बैठा हूँ, भाई पैसे चाहिए तो हमें क्या चाहिए, रा दिया तम मर दिया, अल्लाह की रजा चाहिए ना, इसलिए कभी परेशान ना हो। अब दो रिएक्शन होते हैं इन मुश्किलात पे, नंबर एक कुछ लोग घबरा के छोड़ देते हैं, आप कुरान छोड़ेंगे और अगर कोई इस्लाम पे आता है तो अल्लाह ना करे वो इस्लाम छोड़ दे, किसका नुकसान है, अपना नुकसान, आप इसी मिसाल को आगे लेके चलिए, फॉर्म फिल तो किया लेकिन जब आपको पता चला कि इस जॉब की तो डिस्क्रिप्शन ये है और बहुत सारे काम है, एम्प्लॉय बैठा है किसी इंटरव्यू वाले के सामने, आना भी है जाना भी है जिम्मेदारी है, आप कहते सॉरी आई कैंट, अब क्या होगा, वो कहेगा ओके नो प्रॉब्लम नो थैंक्स, अब जो ही आप वहां से उठेंगे बताइए आपका एम्प्लॉयर आपके उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या करेगा, कच रद्दी की टोकरी, तो आप कोई जाता है शौक से जाए, अल्लाह उसके फॉर्म को काट के रद्दी की टोकरी में डाल देंगे और कहेंगे गो हेड जॉब भागो, फिर मौजे करो, फिर दुनिया को जन्नत बना लो, देखो कितने दिन बनती है, हो सकता है वहां से निकले बाहर कदम बाहर रखे मौत आ जाए, जिस दुनिया के फायदे जुजीन अलिल्लजीना कफरू बात वाली पे आ जाए, और दूसरी बात हम हसीब तो मुश्किलात, यानी दो ही चीजें हैं जो बंदे को अल्लाह का बंदा बनने से रोकती हैं, या दुनिया का लालच या अल्लाह के रास्ते की कुछ आजमाइशें, अब वो जिस दुनिया के फायदे के लिए दीन छोड़ा इस्लाम छोड़ा किताब छोड़ी, हो सकता है अगले लम्हे मौत आ गई वो भी खत्म, लेकिन आगे क्या है ना, खत्म होने वाला हिसाब, तो अल्लाह ताला कहते फिक्र करो सोचो अपने आप को देखो, इस घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। वो कहते नहीं नहीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। ये दूर वाले कहते, असल बात यह कि अल्लाह की ज़ात इस रास्ते में बहुत कुछ दिखाता है। मैं आप सबको एक होमवर्क दे के आगे चलती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं, लेकिन वेबसाइट से भी दिखा देती हूँ। मेरा ख्याल है जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो लिंक मौजूद था। यही जो आयत इस वक्त हमारे सबक में, इस तरह जन्नत की सच्ची तलब के नाम पे ऑडियो सीडीज में जाएंगे तो दावा सीडीज के अंदर आपको एक लेक्चर मिलेगा जन्नत की सच्ची तलब, वो इसी सीडी पे है। उसमें बहुत सारे मिसालें, आप सब उसको सुन के वो नोट करके लाएंगे। कल हम डिस्कशन में इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। जब कोई जन्नत के रास्ते पे चलता है, उसमें मैंने स्टोरीज कुछ सहाबा की शेयर की थी। ये देखिए, अगर आप नूरुल कुरान पे जाके इधर साइड पे एक बार है, अच्छा ये लगा भाई, यहाँ पे सीडीज के नाम पे प्रोजेक्ट्स के अंडर असाइनमेंट में भी डालेंगे, सुनिए कि नहीं। ये देखिए वेबसाइट तो आप सबको अब याद है, ये प्रोजेक्ट्स, और इसमें ऑडियो सीडीज में जाते हैं। ये सब वो टॉपिक है जो हम सीडीज में दे चुके हैं। आप लोग इसको बना के कवर के साथ आप जितनी मर्जी डिस्ट्रीब्यूट किया करें, इंशाल्लाह फायदा होगा लोगों को। इसमें काफी टॉपिक्स है, जिसमें एक टॉपिक एंडलेस डिलाइट है इंग्लिश में, और जन्नत की सच्ची तलब, ये इसी सीडी इसी आयत की तफसीर है। आप ये सब इसको सुने, लेकिन आप फील करेंगे कि जब आप इसको सुनेंगे तो आपको ये तरह समझ आएगी कि मेरे रास्ते में मुश्किलात ज्यादा हैं या अल्लज़ीन खलौ मिन क़ब्लिकुम के दीन। हम अपनी मुश्किलात पे रहते हैं, इसलिए हमें दूसरों की नहीं लगती। सिर्फ एक बात समझ लें कि इस रास्ते में बाहर से जो मुश्किलात आती हैं ना, ये इतनी बड़ी नहीं होती। अंदर की दो मुश्किलात है उसका जिक्र करके आगे चलते हैं। नंबर एक, जो सबसे बड़ी मुश्किल अल्लाह का बंदा बनने के बाद बंदे पे आती है ना, वो क्या है कि उसको अपनी जिंदगी को बदलना पड़ता है। बचपन की कुछ आदत जो इंसान के साथ लगी होती हैं उसको चेंज करना पड़ता है। पहले और थी अब और है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं ईमान वालों को सूट ही नहीं करती, सच्ची जो बात है। उनका कैलिपर ही इतना डिक्लाइंड और इतना लो नहीं है कि वो काम कर सके। वो कहते ना कि ईमान मुझे रोके है और बुलाए कुफर। हाँ, पीने की आदत भी है, निकलती हैं दुआएं उनके मुंह से ठुमरियां बन के। गाने भी सुनने की आदत है और दुआएं मांगने की भी अब आदत पड़ रही है। अल्लाह के आगे भी खड़े होने को दिल करते हैं और कहीं गलत चीज़ों पे भी जाके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में फिर इंसान सोचे कि इम्तिहान तो आएगा। वही लोग पलटते हैं जो ये सोच लेते हैं कि कोई टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट की तैयारी करके ईमान के ऊपर आते हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे फायदा होगा। दूसरी चीज जो आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ती है ना, वो है अना, आई एम माई सेल्फ, ईगो। इस्लाम की चोट बंदे की अना पे पड़ती है। हम लोगों की नजरों में बड़े बनना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें अल्लाह की नजरों में बड़ा बनना है। तो इस किस्म के इमोशनल किस्म के टेस्ट देने पड़ते हैं। उदखुलु फिस्सिल्मि काफा पे अमल करने वाले ही आएंगे। जब हर चीज को अपने दिल से रखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। बाकी चीजें हम इसके डिस्कशन में देंगे, आगे चलते हैं।
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जब ईमान अंदर आता है ना, तो मुर्दा ईमान नहीं होता, मुनाफिकों वाला ईमान नहीं होता कि ईमान भी है और काम भी ना करें। सवाल पैदा होता है कि जब अंदर ईमान आएगा तो तब्दीली क्या शख्सियत में आएगी। अगली दो आयतों में इन्हीं तब्दीलियों का तذکرہ है। सहाबा के अंदर जब सच्चा ईमान आया तो उसके बाद उन्होंने अल्लाह के नबी से ये नहीं कहा कि कोई वजीफा बता दें जिसको पढ़ूं और जन्नत मिल जाए। हम तो अक्सर ऐसी बातें करते हैं ना, वजीफा बता दें, कोई शॉर्टकट दे दें, नहीं, अमल की बातें। सच्चा ईमान आता है तो फिक्र ये पड़ जाती है कि मैं क्या करूं, जिसमें से पहली बात जो यहां हमारे सामने आ रही है, यसलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं। कौन करते हैं? सहाबा। किससे करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या सवाल है? माज़ा युन्फिकून, हम क्या खर्च करें? माल मेरा है, मैं अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च करूं? अल्लाह के नबी से डायरेक्शंस लेते थे अपने मनी मैटर्स की। हम इसके जवाब में दो बातें लिख देते हैं, अपने नफ्स की खुशी पे खर्च करो, जो मन चाहते हैं ना वो खरीद लो, जितना जिस जिस रंग का कपड़ा नहीं है वो खरीद लो, जिस रंग की जूती नहीं वो खरीद लो, जिस रंग का स्वेटर नहीं वो खरीद लो, जिस रंग की सॉक्स नहीं वो खरीद लो, जिस रंग की पिन नहीं वो खरीद लो, जिस रंग का टॉप्स नहीं है वो खरीद लो। यही है ना आज नफ्स की ख्वाहिश के पीछे चलने का नतीजा। लेकिन अल्लाह का जवाब सुनिए, कुल मान फक्तुम मिन खैर, कह दीजिए जो कुछ भी तुम खर्च करो। उन्होंने पूछा क्या करें, अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ किन पे खर्च करो, क्या करना है अपने दिल से पूछो, जो अफोर्ड कर सकते हो एक पैनी भी दे सकते हो और 100 भी दे दो, तुम्हारी मर्जी। या नोट करें माजा में था क्या, वट, अल्लाह जवाब देता है टू होम, किस को दो, मिन खैरिन माल में से। यहाँ लफ्ज़ खैर को हाईलाइट करें, आगे फिर आएगा तो यहाँ आपको दोनों का फर्क वहां जाके बता दूंगी खैर के लफ्ज के ऊपर, कि यहाँ मुराद बस ये लिख ले माल है, कि जो तुम्हारी मनी है उसमें से खर्च करो, किस पे, सबसे पहले तुम्हारे खर्च का हकदार फलिल वालिदैन, माँ बाप पे। तुम अपने ऊपर खर्च करो कि ना करो, अपने माँ बाप पे खर्च करो। और याद रखिए कि माँ बाप के अंदर पूरी लड़ी चलती है, माँ बाप भी है ना तो दादा दादी भी है, तो नाना नानी भी है, तो पर नाना नानी बुजुर्ग जिसको आप कह लें, ठीक है, अपने वालदैन है तो माँ बाप के ससुराल के भी यानी शौहर के भी माँ बाप उसमें आते हैं, और इसमें आप देखें तो फिर बाकी भी माँ बाप जो रूहानी माँ बाप है, जिस तक इसके सिलसिले को ले जाए। सेकंड वल अक्रबीन, करीब वाले, कुर्ब से, अल अक्रब मिन अल अक्रब, हक किसका ज्यादा है, जिसका रिश्ता आपसे ज्यादा करीब है। जैसे अगर माँ है बाप है तो उसके बाद भाई और बहन, भाई बहन है तो फिर भाई बहन के बच्चे, यानी एक करीब वाला है ना तो उससे शुरू करो, फिर उसके दूर, फिर उसके, मिसाल है कि तुम्हारी बहन है तो बहन, बहन को दे दो, फिर उसके बाद बहन की बेटी को भी दे दो, फिर बहन की बेटी को दे दिए तो फिर उसकी पोती मौसी को भी सोच लो, खाला को दिए तो अब उसके बाद सोचो कि खाला की बेटी को भी देना कि नहीं देना। ये नहीं हो सकता कि खाला की बेटी को दे और खाला को महरूम कर दो, मिसाल दे रही हूँ अलग रब की। वल यतामा, और यतीमों को, वल मसाकीन, और मिसकीनों को, ये कौन है, जिनसे तुम्हें जवाब में कुछ नहीं मिलेगा। देखिए वालदैन को तो बंदा दे ही नहीं सकता, हक ही नहीं दे सकता। एक शख्स ने एक आलिम दीन से सवाल किया कि मेरी तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, बीवी बच्चों के खर्चे पूरे करके इतना नहीं बचता कि माँ बाप को दे सकूं, तो क्या फिर भी मेरी पकड़ है, सवाल समझ गए। उनका जवाब बड़ा खूबसूरत था, अल्लाह उनको जन्नत दे, दुनिया में आज नहीं है, बख्शिश करे अल्लाह उनकी। कहते हैं कि मेरे दोस्त मुझे बड़ी खुशी होती अगर आपका सवाल ये होता कि मेरी पे बड़ी थोड़ी है, खर्चा पानी बहुत मुश्किल से पूरा होता है, माँ बाप को देने के बाद बीवी बच्चों के लिए पूरा नहीं बचता, तो क्या मेरी पकड़ तो नहीं है। अंत व मालुक अली अबीक, आपने एक साबी को कहा कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है, पता है आपको, मैं अपने ऊपर लगाऊं ना लगाऊं लेकिन मुझे अपने माँ बाप पे लगाना चाहिए, ये आपको क्राइटेरियन है। अब इसके फिकी सवालों पर ना भी जाए, सिर्फ क्राइटेरियन देखिए कि माँ बाप को मोमन बंदा क्यों नहीं दे। अच्छा पूरे कुरान में कहीं ये नहीं है कि अपने बच्चों पे लगाओ, मजे की बात है, भला क्यों, कि बच्चों पे लगाना तो बंदे की रग रग में बसा हुआ है, आज भी लगा रहे हैं, उनके 10-50 साल के मुस्तकबिल के लिए भी लगाने को तैयार है। बंदा फितरतन बच्चों पे लगाना पसंद करता है लेकिन माँ बाप को देना वजह लगता है, क्यों, इन्होंने अब क्या करना है, बुढ़े हो गए, ये इनको दूंगी ना देखना भाभी ने ले जाना है, ये अम्मा ने पकड़ के उसको देने दें, फिर अम्मा ने तो पता नहीं इतने दिन जीना है कि नहीं जीना, मैं इनको क्यों दूं, वल्लाह ही नहीं। इस पे आगे बात करेंगे जहां सिर्फ टॉपिक होगा कि इस्लाम माँ बाप के लिए क्या कहता है, और जब बच्चे मुसलमान हो जाते हैं तो उन माँ बाप को तो सजदे करने चाहिए, जब बच्चे कुरान पढ़ने लग जाए तो उन माँ बाप की तो लॉटरी निकल आई, अब वो खुशी का सबब होंगे अपने माँ बाप की। फिर अकरबीन, रिश्तेदार के बाद देखिए यतीम और मिस्कीन, अकरबीन पे जब हम लगाते हैं ना तो ये दूसरा लेवल है, पहला क्या है माँ बाप का, उनका तो मामला ही अलग है, वो तो हमारे से भी ऊपर है। रिश्तेदार वो होते हैं जो बराबर की चोट के हैं, हम उनको देते हैं वो हमें देते हैं, टिट फॉर टैट, हम उनके घर जाते हैं वो हमारी बड़ी अच्छी खातर करते हैं, वो हमारे घर आएंगे हम उससे चार गुना करेंगे, हम उनके लिए तोहफा लेके जाते हैं अमूमन वो भी हमें वापसी पे दे देते हैं, चलता ही है ना ट्रेडिशनल, इस पे। और आप देखिए कि अकरबीन में हम अमूमन किन रिश्तेदारों को देते हैं, जो हमें देते हैं, हम उनके पास जाते हैं जो हमारे पास आते हैं, हम भूल जाते हैं। मिसाल है कि आपके ताया की 4 बेटियां हैं, एक बेटी के साथ आपका बहुत क्लोज है, आप उसी शहर में रहते रहते हैं, आते हैं, दावते खाते हैं, दो तीन और हैं जो दूर हैं, कभी कभी मिलती हैं, अमूमन हम किसको तोहफा देंगे जाएंगे, बस उसको देंगे जिसके साथ आपका लेन देन है। कहते नहीं, इतना लेन देन नहीं बढ़ा सकते, हालांकि अल्लाह कहते हैं अकरबीन, खुर्ब की वजह से दो, पास होने की वजह से, ये लेन देन की वजह से ना दो। ला तमनुन तस्तकसिर, सूरत मुद्दसिर में आता है कि ज्यादा लेने की खातिर ना दिया करो कि अब 50 का दे रही हूं तो 100 का मिलेगा। ठीक है, आखिरी दर्जा देखिए, यतामा मसाकीन व अपने सबील, ये तीन वो गिरोह है जिनसे वापसी में कुछ मिलने की उम्मीद ही नहीं है। बात वाजे, सबसे मुश्किल है इनको देना, कोई कंसिडरेशन भी नहीं अमूमन मिलेगी। ले गया जो बंदा वो चला गया, मुसाफिर था, उसको आप कहाँ देंगे ढूंढेंगे, वो आपकी तारीफें नहीं करेगा। हो सकता है आप अपने रिश्तेदारों को बहुत दें तो वो आपके गुण गाएं, ये बहुत देती हैं हमें, मिसाल है, अल्लाह हमारी नियतों को खालिस रखे, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों से कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन तो मिल ही जाती है ना। यतीम मिसकिनों से भी हो सकता है कोई कह दे हाँ ये बाजी आती है तो मुझे बड़ा देती है, होती है ना मासियां, लेकिन वबने सबील से क्या मिलना है। ये वो बंदा है जो राह चलता है, जहां आपको बस में मिला, उसकी जेब कट गई, पैसे भी नहीं थे, आप चुपके चुपके से $10 निकाल के उसको देते हैं, अब वो ना जानते आपको ना आप उसको जानते। अल्लाह कहते हैं उनको दो जिनसे तुम्हें एक लफ्ज की उम्मीद नहीं। हाय क्यों दे, किसको पता चला फायदा क्या हुआ, कहा मुझे पता चल गया, वमा तफलु मिन खैरिन फइन्नल्लाह बी अलीम, तुम जो भी खैर का काम करोगे अल्लाह इसको खूब जानता है, अल्लाह को दिखाओ। एग्जीबिशन करना होता है ना तो दूसरों से चीजें छुपाते हैं आर्टिस्ट, ताकि आखिरी दिन खोलेंगे डिस्प्ले होगा। बंदे मोमिन इस दुनिया में अपनी नेकियों का एग्जीबिशन नहीं करता, छुपा के रखते हैं अपने कैनवस, आखिरत मेला डिस्प्ले करेगा, वो दिखाएगा देखो बंदो ये नेकियां करके आए, असल माल का हक तो इसने दिया है, और ये फला अपना ही सांप बन के बैठा रहा अपने खजाने पे, तिजोरी की चाबी कभी किसी को दी नहीं, मरा तो पता चला बाबा जी इतने गरीब थे, कपड़े भी सही नहीं पहनते थे, पीछे से देखो क्या सोने चांदी के ढेर निकले, ये इस्लाम नहीं चाहता। अब यहां देखिए खैर का लफ्ज आया, तो दोनों लफ्ज खैर को आप हाईलाइट कर ले, पहला लफ्ज खैर इसका मनी है, माल, मनी, वेल्थ, दौलत, और दूसरा खैर क्या है, गुड डीड्स। तो माल खैर बन जाता है जब अल्लाह के रास्तों में लगाएं, और माल शर बन जाता है जब अल्लाह के रास्तों के बजाय सिर्फ अपनी जात पे लगा ले, फइन्नल्लाह बिही अलीम, और अल्लाह इसको जानता है। इशारा दे दिया कि अगर किसी को नहीं पता चला कि तुमने किसी को दिया तो फिर फिक्र ना करो, अल्लाह को पता है। और आखिरी आयत में सहाबा के एक और सवाल का जवाब है, जो सवाल आगे आएगा जवाब इधर है, मुसलमान हो गए हो ना, कलमा पढ़ लिया ना, किताब शऊर से पढ़ने लग गए हो ना, तो अब जन्नत चाहिए, तो सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं, तमन्नों से नहीं, बल्कि कुछ करो। क्या करो, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पे लड़ाई करना फर्ज कर दिया गया, हालांकि वहुवा कुरहुल्लकुम, तुम्हें बड़ा नापसंदीदा। ऐसे लगता है बहुत सारे लोगों के दिल की बात इस आयत में लिख दी, आज तो पूरा वेस्ट चीखता है इस बात पे कि जी लड़ाई और लड़ाई, और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जुमले बोलते हैं ना कि ये जंगे करते थे, लड़ाई करते थे, लेकिन हिस्ट्री आगे आप पढ़ते जाएंगे आप खुद देखेंगे, थोड़ा सा आपने पीछे देखा, कल के सबक में भी तस्करा, बस सहाबा को बता दिया कि देखो अम हसिब तुम तदखुलुल जन्ना के रस्ते में कभी कभी माल की नेकियां आती हैं, माल खर्च करना पड़ता है, और कभी कभी लड़ाई भी करनी पड़ती है, और तुम्हें लड़ाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन वासान तक रहो शैयन वहुवा खैरुल्लकुम, हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ ना पसंदीदा लगे, यू डोंट लाइक एनी थिंग बट इट्स वेरी गुड फॉर यू वहुवा खैरुल्लकुम, और कभी कभी इसका ऑपोजिट भी होता है, वह आसान तो है बुशैयन यू विल लाइक एनी थिंग लेकिन वहुवा शरुल्लकुम, तुम्हें बहुत ही बुरी लगे, तुम्हारे लिए बहुत बुरी हो, वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तालमून, अल्लाह खूब जानता है तुम नहीं जानते। बज़ाहिर आयत शुरू हुई है किताल से, लेकिन इस आयत का टॉपिक किताल नहीं है, पीछे भी बात हुई, अगली आयतों में आ रही है। इस आयत का थीम क्या है, तुम किसी चीज को अच्छा समझते हो लेकिन वो बुरी हो सकती है, और तुम बुरा समझते हो अच्छी, तो यहां भी आयत आई है, 3-4 रुकू के बाद शोहर बीवी के मामले में भी आएगी कि तुम्हें हो सकता है एक बीवी अच्छी नहीं लगती लेकिन तुम्हारे हक में अच्छी हो। इसको थोड़ा सा समझ के बात को पूरा कर लेते हैं कि देखिए कि एक होती है चीज जो जाहरी तौर पर बहुत अच्छी लगती है, अमूमन नफ्स को क्या अच्छा लगता है, लिखिए जरा, नफ्स की ख्वाहिश क्या है, खूब सोना, खूब खाना। बच्चे को ले ले, बच्चे को क्या पसंद होता है? खेलना, कूदना, दोस्तों में रहना, चॉकलेट्स खाना, कैंडी खाना, क्या पसंद नहीं होता बच्चों को? दूध, काम करना, सोना भी नहीं पसंद होता। माँ सुलाती है, वो उठ के भाग जाते हैं। माँ नहलाती है, वो उसमें भी खेलने शुरू हो जाते हैं। माँ नाखून काटती है, वो नाखून ही कटवाते रोते हैं। इंसान के नफ्स को अमूमन आसान चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन अल्लाह कहता है तुम्हारे लिए नुकसान है। आपको चॉकलेट पसंद है, अल्लाह कहता है कि आसान तक रहो, हो सकते हो तुम्हारे लिए बुरी हो। फायदा होता है चॉकलेट का? खजूर और चॉकलेट आपको कोई पेश करे तो क्या उठाएंगे? जी हजरत, आपको कोई खजूर और चॉकलेट दे के इनमें से चूज करो तो क्या लेंगी? चॉकलेट। आप क्या लेंगी? चॉकलेट। आप क्या लेंगी? हाँ चॉकलेट। आप क्या लेंगी? आप क्या लेंगी फारिया? हाँ चॉकलेट। आप क्या लेंगी? हाँ चॉकलेट। चॉकलेट, सारा ग्रुप चॉकलेट का आगे बैठा हुआ था। लेकिन आसान तो हिब्बू शैयन वह हुआ शरुल्ला को। आपको चॉकलेट पसंद है, नुकसान क्या होगा? दांत खराब, मोटे हो जाएंगे, फिर और दूसरी नेचुरल चीजें अच्छी नहीं लगेगी। घर में फ्रूट आके क्यों जलता भुजता है? सिवाय फ्रूट चाट के कोई खाता ही नहीं है, या स्मूदी बना दे। चॉकलेटें कभी कहना पड़ती है बेटा चॉकलेट खा लो ना, माएं छुपाती फिरती हैं, उन्होंने साइन लिख के रखे होते इसको नहीं खाना, करते हैं ना। तो नफ्स चाहते हैं आसानियां। अब आप क्या चाह रहे हैं इस वक्त? ब्रेक। आसान तो हिब्बू ब्रेकन वह शरुल्लकुम, सबक पूरा नहीं होगा। आपको चाहिए हफ्ते में 4 दिन आना, अल्लाह कहते शायद तुम्हें इसका नुकसान हो, कमी रह जाए। आपको क्या चाहिए? टेस्ट ना हो, आसान तकरहु टेस्ट वह खैरुल्लकुम। अब आप सब ने अपनी अपनी लिस्टें बना के लानी, इसमें हम बहुत लंबी लिस्ट बनाते होते हैं। अपने लिए लिखिए, आज आपने खुद को खंगालना है, मुझे क्या पसंद है जबकि वो मेरे लिए नुकसानदेह। इसमें हराम मोहब्बतें भी हैं, चैटिंग भी है, इसमें दोस्तों के साथ वक्त जाया करना भी है, इसमें देर तक जागना भी है, इस पे नफ्स पे बोझ पड़ने वाली चीजें भी, इसमें शराब कबाब भी है, और छोटी से छोटी चीजें भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी पसंद को बदल दे। दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे बदल के एक नया इंसान बना दे। कभी आपने बच्चों को वो क्ले के साथ खेलते देखा? क्ले होती है ना, मुझे रंगदार मिट्टी है, मुझे भी बड़ा मजा आता है। वैसे बच्चे खेल रहे हो तो मुझे भी खुजली होती है कि मैं भी इनसे लूं। वो पहले एक चीज बनाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, खींचते हैं, फिर दिल भर जाता है कुछ और बना, फिर एकदम उसको मिटा देते हैं। मैं जब इन आयतों पे पहुंचती हूँ या इस टॉपिक पे होती हूँ ना, तो मेरे दिल में ये आता है कि अल्लाह तू मुझे मट्टी का बना, और फिर जैसे तेरा दिल करता है ना वैसे ढाल ले। और आपको पता है कि बंदगी भी यही है। इमाम गजाली कहते हैं बंदगी, जो हम सुबह शाम कहते हैं या कनाबुदो या कनस्तैन, के अल्लाह अपना बंदा बना, वो क्या है? कहते हैं बंदगी ये है कि बंदा अपने आप को अल्लाह के हाथ में ऐसे दे दे जैसे मुर्दा खुद को नहलाने वाले के हाथ में दे देता है, जो मर्जी का। तो अल्लाह से कहा करे कि अल्लाह मुझे जैसा मर्जी बना ले, मैं खुश हूँ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون